नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा में अदाणी और अंबानी का नाम ले रहे थे। उसी दिन हिंडनबर्ग रिसर्च भारत की नियामक संस्था सेबी के सवालों का जवाब सार्वजनिक कर रहा था। सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी का जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी को पूरा का पूरा नोटिस और अपना जवाब सार्वजनिक कर दिया। लिखा है कि हम यह इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बकवास है। पहले से तय उद्देश्य के लिए किया गया है और उन लोगों को चुप कराने और धमकाने के लिए किया गया है जो भारत के सबसे ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार और फ्रॉड की पोल खोल रहे हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि यह शर्मनाक है कि सेबी हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेज रही है जबकि अदाणी समूह के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है। अदाणी सुप्रीम लीडर को कंट्रोल करते हैं जिनका सेबी पर नियंत्रण है। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से लेकर अब तक अदाणी समूह को लेकर मीडिया में जितनी भी खोजी रिपोर्ट आई हैं सब में अलग अलग तरह के गंभीर सवाल उठे हैं, लेकिन अदाणी समूह के खंडन के बाद उन्हें तुरंत भुला दिया गया। उम्मीद है सेबी भी हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से देगी ताकि मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक जानकारियां मिल जाएं। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सेबी ने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट किंगटन कैपिटल मैनेजमेंट को दिया था। इसकी मदद से किंगटन ने एक फंड बनाया जिसका नाम सेबी ने के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड KIOF बताया है। इसके माध्यम से अदाणी के स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाई गई और मुनाफा कमाया गया। ब्लूमबर्ग में लिखने वाले पत्रकार एंडी मुखर्जी ने इस पर लिखा है कि शो कॉज नोटिस के सार्वजनिक होने से दो दिलचस्प बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि अदाणी को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही गुमनाम निवेशक देश के बाहर स्थित था और दूसरा यह कि इस ऑफशोर इकाई को बनाने और चलाने में कथित रूप से कोटक बैंक शामिल था। कोटक ने भी अपना बयान जारी किया है, इसी वीडियो में हम आगे भी बताएंगे। सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी से ही कई सवाल पूछ दिए हैं। जैसे अक्टूबर 2022 में गौतम अदाणी ने सेबी के चीफ से दो बार मुलाकात क्यों की, सेबी ने उदय कोटक या कोटक महिंद्रा का नाम क्यों नहीं लिया जिसके इस्तेमाल से हिंडनबर्ग के निवेशक ने अदाणी स्टॉक को शॉर्ट किया। शॉर्ट करना शेयर बाजार में शेयर बेचने खरीदने की एक अलग प्रक्रिया है। हिंडनबर्ग को मिले नोटिस में कोटक के लिए सेबी सिर्फ KMIL और KIOF नाम का प्रयोग करती है। 2017 में उदय कोटक ने सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमेटी की अध्यक्षता की थी। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि सेबी द्वारा कोटक का नाम न लिया जाना इस बात का इशारा हो सकता है कि सेबी कोटक को जांच से बचाना चाहती है। हिंडनबर्ग ने यह भी पूछा है कि सेबी मीडिया को गलत सूचनाएं क्यों देती है कि हिंडनबर्ग ने अदाणी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंडनबर्ग ने यह भी जानकारी दी है कि अदाणी थीसिस में निवेश करने वाले निवेशक के माध्यम से उन्होंने $4.1 मिलियन ही कमाया है। अपने खुद के निवेश पर हिंडनबर्ग ने मात्र $31,000 कमाया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सेबी को हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सेबी की दिलचस्पी उन लोगों का पीछा करने में है जो ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। भारत सरकार के आचरण पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सेबी का बर्ताव सरकार की अन्य इकाइयों के जैसा ही है जिन्होंने अदाणी के खिलाफ लिखने वाले 4 पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और 2 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी रिपोर्ट का विरोध होगा, जबकि उन्होंने विस्तार से और पूरी सत्यता के साथ सारे सबूत पेश किए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमने 106 पन्नों की रिपोर्ट में 720 साक्ष्यों का उदाहरण देकर बताया है कि अदाणी ने सरेआम स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और दशकों तक अकाउंटिंग फ्रॉड भी। हमारी रिपोर्ट में गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी और उनके करीबियों की ऑफशोर शेल कंपनियों के एक विस्तृत नेटवर्क के सबूत दिए गए हैं। हमने बताया है कि कैसे इन शेल कंपनियों में अरबों रुपए घुमाए गए जो अदाणी की प्राइवेट और पब्लिक इकाइयों में डाले गए या वहां से निकाले गए। इन इकाइयों में कौन कौन लोग शामिल हैं इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। हमने बहुत से सार्वजनिक दस्तावेजों और साक्षात्कारों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे देश के बाहर स्थित फंड ऑपरेटरों ने न्यूनतम शेयर होल्डिंग लिस्टिंग के नियमों से बचने में अदाणी की मदद की। हमारी रिपोर्ट के कुछ समय बाद अगस्त 2023 में डेलॉइट ने हमारे द्वारा दिखाए गए अघोषित रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए अदाणी पोर्ट्स के कानूनी ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया। हमारी पहली रिपोर्ट के बाद कम से कम 40 स्वतंत्र मीडिया संस्थानों ने खोजबीन करके हमारी रिपोर्ट में मिली जानकारी की पुष्टि की है और नई जानकारी जोड़ी है। इन रिपोर्ट में शेयर होल्डर और भारतीय टैक्सपेयर के साथ किए गए फ्रॉड के तमाम सबूत हैं। आज तक अदाणी ने हमारी रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर साफ साफ जवाब नहीं दिया, हमारे हर आरोप को नज़रअंदाज किया और जनरल जवाब दिए गए। अदाणी समूह ने हमेशा ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही नहीं माना है, खंडन किया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने कहा है कि अदाणी समूह के जवाब जनरल थे, उनके सवालों के साफ साफ यानी बिंदुवार जवाब नहीं दिए गए। एक साल से सेबी इस मामले की जांच कर रही है और जब भी लगता है कि यह मामला भुला दिया गया है कुछ न कुछ सामने आ ही जाता है। चुनाव के दौरान कोयला कारोबार से जुड़ी खोजी रिपोर्ट आई जिसके बारे में हमने आपको पहले के वीडियो में बताया भी। 21 मई 2024 को फाइनेंशियल टाइम्स और OCCRP की रिपोर्ट आई कि खराब कोयला बेचकर भारत सरकार से बढ़िया क्वालिटी का दाम लिया जा रहा था। ऐसा कर भारत के शहरों की हवा खराब की गई और अदाणी समूह ने बंपर मुनाफा कमाया, सरकार की बिजली कंपनियों को ठगा गया। इसके कुछ दिन पहले यानी 8 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में अदाणी और अंबानी पर आरोप लगाया कि टेम्पो में काला धन भरकर कांग्रेस को पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दोबारा कभी अपने इस बयान को सत्यापित नहीं किया। उन्होंने यह बात चुनावी रैली में की, इसलिए लोकसभा के नियम लागू नहीं होते हैं। फिर भी जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी को एक एक बात को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी इस बात को सत्यापित करें और बताएं कि उन्होंने अदाणी अंबानी के टेम्पो को कहां देखा था जिसमें काला धन भरकर कांग्रेस को पहुंचाया जा रहा था और सूचना मिलने पर उन्होंने क्या कदम उठाए। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी ने जनवरी 2023 में उसकी रिपोर्ट के प्रकाशित होने के फौरन बाद ही चुपचाप अदाणी की मदद करना शुरू कर दिया। हिंडनबर्ग ने यह भी लिखा है कि उनकी रिपोर्ट के बाद पब्लिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की मांग के दबाव में सेबी बौखला गई। शुरुआत में सेबी ने हमारी रिपोर्ट की कई मुख्य बातों को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले से ही सेबी खुद को इस बिंदु पर संतुष्ट नहीं कर पाई है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फंड में पैसा डालने वालों का अदाणी से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद सेबी ने कहा कि वो आगे की जांच नहीं कर सकती। कोर्ट के दस्तावेज से पता चलता है कि सेबी ने कहा कि उन्हें जांच में आगे कुछ नहीं मिल रहा। सेबी ने कहा कि आगे की जांच बिना मंजिल के सफर जैसी होगी। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अदाणी की जांच करने को लेकर सेबी की अक्षमता या अनिच्छा को दर्शाता है। हिंडनबर्ग के अनुसार मीडिया रिपोर्ट देखकर यही लगता है कि सेबी अदाणी पर नाम मात्र की पाबंदी या हर्जाने लगाएगी। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि जून 2024 में अदाणी के CFO जोगेशिंदर सिंह ने सेबी के नोटिस को बेमतलब कहा। यह बताता है कि सेबी की जांच को लेकर कोई गंभीर नहीं। सेबी को हिंडनबर्ग के इन आरोपों का खंडन करना चाहिए, विस्तार से मीडिया में आकर ऑन रिकॉर्ड जवाब देना चाहिए। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि CFO जोगेशिंदर सिंह का यह आत्मविश्वास अदाणी और सेबी के रिश्ते से आता है। मीडिया रिपोर्ट और RTI से मिली जानकारी का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने लिखा है कि 2022 में गौतम अदाणी दो बार सेबी की अध्यक्ष से मिलने गए। 12 अक्टूबर 2022 के हिंदू बिजनेस लाइन में पलक शाह की यह रिपोर्ट है जिसकी हेडलाइन में ही लिखा है, अदाणी का सेबी के दफ्तर में जाना सरप्राइज विजिट था। पलक ने लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से लिखी, इसे रेखांकित करना जरूरी हो जाता है। लिखते हैं कि 4 हफ्ते के भीतर दो बार अदाणी सेबी की तत्कालीन चीफ माधवी बुच से मिलने गए। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करने वाले वे पहले हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि इनमें से एक मुलाकात अदाणी समूह द्वारा 10.5 बिलियन की लागत से ACC और अंबुजा सीमेंट कंपनियों के सौदों को लेकर चर्चा के बारे में थी। रॉयटर्स के अनुसार इस सौदे में सेबी खास तौर पर सौदे को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुए ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की जांच कर रही थी। बाद में ये ऑफशोर खाते विनोद अदाणी के निकले। उल्टा हिंडनबर्ग अब यह कह रहा है कि सेबी कैसे काम करती है यह जानने के लिए वह RTI करने जा रही है, जिसमें हम सेबी के उन कर्मचारियों के नामों की जानकारी मांगेंगे जो अदाणी मामले और हिंडनबर्ग मामले दोनों पर काम कर रहे थे। साथ ही उन सभी मुलाकातों और बातचीत की जानकारी मांगेंगे जो सेबी और अदाणी समूह और उनके प्रतिनिधियों के बीच अभी तक हुई है। हम इंतजार करेंगे और ये देखेंगे कि सेबी अपनी जांच के बारे में बुनियादी पारदर्शिता रखते हुए जानकारी मुहैया करवाती है या नहीं। हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में मीडिया रिपोर्ट के कई हाइपर लिंक दिए हैं, यानी जो भी जहां भी कुछ भी छपा है उसे समेट कर अपने जवाब में शामिल किया है। हिंडनबर्ग ने अपने ब्लॉग में बहुत सी खोजी रिपोर्ट के लिंक दिए हैं, आप फिर से पढ़ सकते हैं, जिन्हें दुनिया भर के पत्रकारों ने छापी हैं। सेबी ने अदाणी समूह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की मई 2024 की खबर है, सेबी ने अदाणी समूह की 7 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा। इसमें मुख्य कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेस भी शामिल है। इस नोटिस का संबंध भी हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट से है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम अदाणी की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि उसे 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ग्रुप की अन्य कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदाणी पावर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी विल्मर और अदाणी टोटल गैस ने भी सेबी की हालिया पूछताछ के बारे में शेयर बाजार को सूचित किया है। इन कंपनियों ने कहा है कि उन्हें जो कानूनी राय मिली है उसके आधार पर सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है। हालांकि अदाणी विल्मर और अदाणी टोटल गैस को छोड़कर इन कंपनियों के ऑडिटरों ने योग्य राय जारी करते हुए सतर्क रुख अपनाया है, जिसका अर्थ है कि सेबी की जांच के नतीजे भविष्य में वित्तीय विवरणों को प्रभावित कर सकते हैं। अदाणी एंटरप्राइजेस के ऑडिटरों ने कहा है कि सेबी द्वारा लंबित निर्णय के कारण और संबंधित दस्तावेजों की हमारी समीक्षा के आधार पर हम किसी भी संभावित खुलासे पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। परिस्थितियों में किसी भी बदलाव या उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के आधार पर हम अपनी राय पर इस मामले के प्रभाव का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे। जो कुछ भी पढ़ा ये रिपोर्ट का हिस्सा है जो पहले छप चुकी है। इस एपिसोड के रिकॉर्ड होने तक अदाणी समूह द्वारा कोई जवाब नहीं आया, ना ही सेबी की ओर से कोई स्पष्टीकरण। कोटक महिंद्रा की ओर से एक बयान जरूर आया जिसमें कहा गया है के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड KIOF सेबी द्वारा पंजीकृत एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और मॉरिशस के वित्तीय कमीशन की निगरानी में आता है। विदेशी निवेशक भारत में निवेश कर सकें इसके लिए इसका गठन हुआ। यह फंड KYC के नियमों का पालन करता है और नियामक संस्थाओं के साथ सहयोग करता रहा है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड KMIL और KIOF यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग कभी भी हमारा क्लाइंट नहीं रहा और ना ही उसने कभी फंड में निवेश किया है। फंड को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिंडनबर्ग उसके किसी निवेशक का पार्टनर है। KMIL को फंड के निवेशक से इस बात की पुष्टि प्राप्त हुई है कि निवेश किसी और के नाम पर नहीं किया गया था, उसका खुद का ही था। हिंडनबर्ग ने सेबी पर अन्य आरोप लगाए हैं। लिखा है कि सेबी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, निवेशकों को बचाने के बजाय फ्रॉड करने वालों की रक्षा के लिए ज्यादा काम किया। इससे भारत की हर पब्लिक कंपनी को मैसेज जाता है कि अगर आप अपने स्टॉक ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो अपने भाई या किसी रिश्तेदार से कहिए कि विदेशी शेल कंपनियों का साम्राज्य खड़ा करके आपके स्टॉक मजबूत कर दे। ये बेहद गंभीर आरोप है। सेबी ने अभी तक ऐसी जांच नहीं की है कि हिंडनबर्ग के आरोपों को आसानी से खारिज किया जा सके। आज तक इस मामले में कोई ठोस रिपोर्ट नहीं आई। हिंडनबर्ग ने लिखा कि अदाणी पर लिखने बोलने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की जाती है। कहा है कि कंपनियों को संदेश जा रहा है कि फ्रॉड से मिलने वाला मुनाफा सेबी की जरा सी डांट से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार इस तरह का फ्रॉड करने वाली अदाणी अकेली कंपनी नहीं है, निवेशकों के लिए संदेश है, आपको फ्रॉड से कोई खास बचाव नहीं, जिसके पास पैसा है उसके लिए भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस मिथ्या है। इस पूरे मामले पर पत्रकार सुगता घोष ने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि अब यह कहानी अदाणी से आगे जा चुकी है, अब यह हिंडनबर्ग और सेबी के बीच की लड़ाई बन गई है जो पब्लिक में सबके सामने हो रही है। शायद सेबी ने चाहा होगा कि यह मामला चुपचाप खत्म हो जाए, मगर पूरी कहानी फिर से हमारे बीच आ खड़ी हुई है। हिंडनबर्ग को इस बात का विश्वास है कि वो सेबी के अधिकार क्षेत्र से दूर है, इसलिए उसने वो किया जो भारत की कोई इकाई कभी नहीं करती, उसने सेबी के नोटिस को पब्लिक कर दिया। घोष लिखते हैं कि ना तो हिंडनबर्ग कभी सेबी के खिलाफ आरटीआई में कामयाब हो पाएगा और ना ही सेबी नोटिस के अलावा कुछ कर पाएगी, इसलिए जो हो रहा है उसमें प्रदर्शन ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। लेकिन इस सब के बीच अदाणी समूह को अब किसी बात की फिक्र नहीं लगती, उसके स्टॉक फिर से ऊपर आ चुके हैं और उसकी कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ने लगा है। घोष ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि सेबी को अब शक है कि कोटक समूह को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जानकारी पहले से थी, क्योंकि उसी की एक इकाई ने किंगटन के लिए शॉर्ट का काम किया। घोष लिखते हैं कि कोटक द्वारा किंगटन के लिए ट्रेडिंग करना नियमों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह सेबी को साबित करना होगा कि क्या कोटक को इस मामले की जानकारी थी। इस बीच न्यूज मिनट की खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन विभाग को अदाणी समूह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अदाणी समूह पर आरोप है कि निम्न गुणवत्ता के कोयले को उच्च गुणवत्ता वाला बताकर तमिलनाडु की कंपनी को बेचा गया। राज्य के सतर्कता विभाग से कहा गया है कि 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे। हमने आपको इस मामले के बारे में पहले अपने वीडियो में बताया था, मई 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच कोयले के कम 2 दर्जन ऐसे शिपमेंट तमिलनाडु तट पर पहुंचे जिनमें शुरुआती कीमत के अनुसार निम्न श्रेणी का कोयला था, लेकिन उन्हें अदाणी समूह द्वारा टेंजेटको कंपनी को मूल कीमत से 3 गुना अधिक कीमत पर बेचा गया। अब तमिलनाडु सरकार ने इसे लेकर जांच बिठा दी है। अदाणी के खिलाफ आने वाली इन खबरों पर हिंदी में बहुत रूटीन रिपोर्टिंग होती है, इसलिए हमने तमाम खबरों का संकलन किया है। अदाणी समूह पर जब भी कोई मीडिया रिपोर्ट आती है लगता है कि कितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया ऐसे आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट को समेटकर रिसर्च बुकलेट ही तैयार कर दिया है और भारत की नियामक संस्थाओं पर सवाल उठा दिया है। जो मामला रफा दफा समझ लिया गया था वो नए किरदारों के साथ फिर से खबरों में लौट आया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।